समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन।
Well, hello and welcome along listeners to Parikrama on 100.1 FM. This is Shagun Chopra with Akarshita. And there's a lot that we're gonna unpack today. We'll be focusing on latest news. There's our discussion segment, Dateline India. We also have reports, business, capsules, tributes and a lot more. So stay tuned and make sure to stick around till the end. All of this is over the next 30 minutes. Let's get started with the headlines first. Filing of nominations for second phase begins with the issuance of notification for Jammu and Kashmir Assembly polls.
गुजरात में बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
Three terrorists killed in separate encounters in Jammu and Kashmir.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में देश भर में तलाशी ली।
सेंटर अमेंड्स रूल्स टू फैसिलिटेट डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन कंपनीज एट गिफ्ट आईएफएससी। And now it's time for a segment, Dateline India, in which we will be taking a look at the developments taking place at national and global level. And today we will talk about National Sports Day. Well, each year on August 29, India rallies to celebrate National Sports Day, which is a tribute to the legendary hockey player Major Dhyan Chand, whose birth we honour on this date. This special day is more than a commemoration. It's a celebration of sports and physical activities, crucial role in our lives. Well, sports can unify, sports can excite, and sports can inspire us like nothing else. And as National Sports Day 2024 unfolds, it's a perfect moment to reflect on how sports unify us, promote healthier lifestyles, and inspire our youth to embrace physical activity. Now, let's talk about Major Dhyan Chand. Affectionately, he's known as the Wizard of Hockey. He was born on August 29 in the year 1905 and is renowned for his extraordinary hockey prowess. His legacy continues to inspire and remind us of the power of sports to elevate both individuals and the nation.
जी हाँ, भारतीय हॉकी के करिश्माई खिलाड़ी ध्यानचंद को अब तक की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता है। हॉकी के इस दिग्गज खिलाड़ी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से भारत सरकार ने 2012 से इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ध्यानचंद की हॉकी में महारत और गेंद पर उनकी शानदार नियंत्रण को देखते हुए उन्हें हॉकी के जादूगर और हॉकी के बाजीगर नाम दिए गए। ओलंपिक खेलों में भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाने में मेजर ध्यानचंद का अहम योगदान रहा। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वो जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। और शगुन, आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत ही खास कि वो ऐसा खेलते थे, जब भी वो हॉकी खेलते थे तो ऐसे लोगों को लगता था कि मतलब वो कुछ ऐसा स्टिक कुछ लगाते हैं वो अपने हॉकी स्टिक में, कुछ गम जैसा कि वो गेंद उससे चिपकी रहती है। और एक ऐसा इतना अच्छा खेलते थे वो। और यहां तक कि एक वाक्य ऐसा है कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी। मेजर ध्यानचंद ने 1926 में खेलना शुरू किया और उनका करियर 1948 तक चला। उन्होंने 185 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने करियर के दौरान 400 गोल किए।
नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट द ओलंपिक्स वेबसाइट मेंशंस अबाउट मेजर ध्यानचंद एंड आई एम कोटिंग, star of the Indian hockey team that dominated the sport in the years before World War II, Dhyan Chand played an important role in helping India complete their first hat-trick of Olympic gold, the first hat-trick of Olympic gold medals with wins at the 1928, 1932 and 1936 Summer Olympics. In 2012, the Indian government honoured Major Dhyan Chand by designating his birthday as National Sports Day, celebrating his monumental impact on Indian sports. This day pays tribute to his unwavering dedication, discipline and fervour for the game, serving as a source of inspiration for athletes across the nation. On this special day, Prime Minister Narendra Modi extended heartfelt greetings, acknowledging Major Dhyan Chand's legendary status. He emphasizes that National Sports Day is not just about commemorating this hockey icon, but also recognizing and applauding all sports enthusiasts and those who have proudly represented India on the global stage.
Sport sirf medal jeetne ka nahi, balki deelon ko jeetne ka madhyam hai. Sport सबका है, सबके लिए है. स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है.
शगुन, हमारे प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि स्पोर्ट्स जो है वो हमारी मेंटल वेलनेस के लिए भी बहुत अच्छा है.
important.
और राष्ट्रीय खेल दिवस का वार्षिक उत्सव समग्र कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने में खेल के महत्व की याद दिलाता है. ये इस बात पर जोर देता है कि आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन, नेतृत्व गुण और टीम वर्क विकसित करने के लिए एथलेटिक्स कितना महत्वपूर्ण है. ये दिन शारीरिक गतिविधि और खेल भागीदारी को बढ़ावा देने का एक अवसर है जो विशेष रूप से युवा लोगों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली के आवश्यक घटक हैं, क्योंकि हम शगुन देख रहे हैं आजकल जो यंग जनरेशन है, यूथ है हमारी, वो कितनी जो है सोशल मीडिया और इन सारी चीजों से चिपक गई है. ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं बहुत सारे, और क्या हो जाता है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितनी कम हो गई है.
राइट.
तो अगर जो है हम एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे एस वी आर सेलिब्रेटिंग, तो हम उनको भी ये प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी थोड़ा सा आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा बाहर खेलें, जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है और उनकी मेंटल स्टेट भी. क्योंकि आप जब दिन भर स्क्रीन टाइम आपका इतना होता है, 6 to 7 आवर्स इज योर स्क्रीन टाइम, तो आपके हेल्थ पे वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है.
एंड स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव आवर ओवरऑल फिटनेस लेवल and also reduce stress and also improve our confidence level.
In fact, कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, तो उससे वो जो है जनरेट होती है और उससे हम थोड़ा खुश महसूस करते हैं. और राष्ट्रीय खेल दिवस का इसका उद्देश्य ही है स्वास्थ्य और खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, निरंतर शारीरिक व्यायामों के लाभों को उजागर करने और अधिक व्यक्तियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कई पहल और कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं. इस संबंध में आइए ओलंपिक 2024 हॉकी कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय से जानते हैं कि कैसे सरकार की कुछ प्रमुख पहलें खेलों को बढ़ावा दे रही हैं.
सरकार की तरफ से खेलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे कि टॉप स्कीम है या विदेशों में कैंप्स कराना है, बेहतरीन कोच और इक्विपमेंट की सुविधाएं देना है. इससे कितना फर्क आया है हॉकी में?
पहली बात तो जितना सरकार का धन्यवाद करूं उतना कम है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कीम निकाली, उसके भी बहुत सारे फायदे हुए हैं. उससे भी प्लेयर निकल के ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मनु भाकर, उसके बाद स्विमर्स भी हैं काफी. उसके बाद अगर मैं बताऊं तो टॉप्स है, टॉप्स का जो फुल फॉर्म है वो है टारगेट ऑन पोडियम स्कीम है. वो काफी फाइनेंशियल भी प्लेयरों को सपोर्ट करती है, उनके हर एक एक्टिविटी, हर एक टूर के लिए उनको फाइनेंशियल स्पॉन्सर कराती है कि प्लेयरों को उनके ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम न हो, उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके और वो मेडल जीत सके. उसके बाद मैं साई की बात करूंगा तो साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जहां पे हमारे टीम गेम्स के मोस्टली कैंप्स लगते हैं, तो हमारी सारी की सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है, एक एक चीज मिलती है हमें, जैसे फूड भी अच्छा हो गया, प्रॉपर डाइटिशियन होते हैं, होते हैं, सब कुछ होता है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस टाइम चल रहा है स्पोर्ट्स की जो भी पॉलिसीज है काफी अच्छी हैं. उसके बदौलत ये है कि जहां पहले हम लोग ओलंपिक में मेडल लाने के सपने देखा करते थे, आज कम से कम मेडल 6, 7, 8 आ रहे हैं और आगे चल के डबल डिजिट में भी आएंगे. उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है.
National Sports Day is more than just a celebration. It's a powerful platform for launching initiatives that ignite passion for sports and fitness across India. And talking about such an initiative, Fit India Movement
It was unveiled by Prime Minister Narendra Modi on this very day in the year 2019. It's a nationwide call to take action for integrating fitness into daily life and prioritizing well-being. This day is crucial in shaping and enhancing India's sports culture. It highlights the incredible ability of sports to unite communities, instill nation pride, and boost the country's reputation on the global stage in various athletic disciplines. National Sports Day is a vibrant reminder of sports potential to inspire and elevate both individuals and the nation as a whole.
और शगुन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमें कितना जो है हमारे हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है, उसी तरीके से कि शारीरिक लाभों के अलावा खेलों से कई मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव और चिंता को कम करती है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है और कार्यप्रणाली में सुधार कर सकती है। शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने से मस्तिष्क में एंड्रोफिन प्राकृतिक मूड बूस्टिंग रसायन जारी होकर तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। एज वी डिस्कस्ड जो है शगुन, की ऑफिसेज में भी आजकल आप देख रहे हैं कि जो है टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वो दे आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू देयर वर्कर्स
इन देयर डेली हैपनिंग्स एंड देयर डेली वर्क एटमॉस्फेयर,
कि अपने जो है वो काम के साथ साथ ये एक्टिविटीज भी करें, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है और उनका जो मेंटल स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ ड्यू टू अ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग और स्क्रीन टाइम से वो भी कम होता है।
स्पोर्ट्स हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल ऑन द एम्प्लॉईज,
होलिस्टिक एक डेवलपमेंट होता है। और हम देखते हैं कि जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, कभी कभी हम देखते हैं हम छोटी छोटी चीजों से बहुत डर जाते हैं या हम बहुत ये कि वी विल बी बिकम अ लूजर, लाइक हार से बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे अंदर ये रेस्पेक्ट रहती है कि हम चाहे जीते चाहे हारें, लेकिन वो एक जो होता नहीं कि हमने अपना बेस्ट दिया।
राइट,
सो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर भी अग्रसर करता है और एक पूरा एक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा
right.
करता है।
एंड स्पोर्ट्स एक्चुअली दे आर वाइटल टू ह्यूमन लाइफ एज दे एनहांस आवर पर्सनालिटी एज वेल, राइट?
जी, और खेल अवसाद के जोखिम को कम करके और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार करके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। और नियमित व्यायाम उद्देश्य और उपलब्धि की भावना भी प्रदान करता है, जो मानसिक आपकी स्थिति को और अच्छा करता है। और खेल मस्तिष्क की कार्यक्षमता, याददाश्त और ध्यान को बढ़ाकर कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं और नई मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को भी ये प्रोत्साहित करता है और जो मस्तिष्क की अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं शगुन कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप कुछ भी किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं,
स्पोर्ट्स विच यू कैन प्ले,
आप दिन में थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और ऐसे स्पोर्ट्स को खेलते रहें, इससे आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक लाभ भी होंगे और आप ज्यादा मोटिवेटेड भी फील करेंगे।
Akarshita, it is also said that, you know, even 10 minutes of sports or, you know, physical activities, they can really help in maintaining your overall health and well-being and fitness. So
that's
it's really
right.
important. Even 10 minutes, if you can find out in your whole day.
Mm-hmm.
So it's really important. And as we mark National Sports Day, we extend our warmest wishes for a day filled with energy and celebration. Today, we honor the outstanding contributions of athletes through the National Sports Day, with the pinnacle of recognition being Major Dhyanchand Khel Ratna Award. This prestigious accolade pays tribute to the legendary hockey star Major Dhyanchand, celebrating his enduring legacy of excellence and inspiring new generation. So here's to a day of athletic triumphs and the remarkable spirit of sportsmanship.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। बिहार में खेल के क्षेत्र में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल अकादमी और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की शुभारंभ करेंगे। नालंदा जिले के राजगीर में 90 एकड़ क्षेत्र में फैले इस खेल सुविधा केंद्र में खेल के आयोजन के अलावा खिलाड़ियों के इलाज, खेल संबंधी अध्ययन और पाठ्यक्रमों का संचालन होगा। इसका निर्माण 750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
राजगीर के खेल परिसर को प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान और अध्ययन के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ एक ही स्थान पर तीन प्रकार के कार्य होंगे। राजगीर खेल परिसर में जहाँ 10 आउटडोर और 14 इनडोर खेलों के आयोजन की सुविधा होगी, वहीं खेल अकादमी में 19 प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि यह देश का एकमात्र स्थान होगा जहां खेल कैंपस के साथ विश्वविद्यालय भी काम करेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों के चोट के इलाज के लिए 24 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया है, जहां सीटी स्कैन, पैथोलॉजी और कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। परिसर को पूरी तरह ग्रीनफील्ड कैंपस के रूप में विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और अन्य प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखकर यहां एक क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, जो 2025 तक पूरा होगा। राजगीर में राज्य का पहला एस्ट्रो टर्फ भी बिछाया गया है, जिससे हॉकी के खिलाड़ियों को काफी सुविधा होगी। खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के लिए 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। वहीं बिहार खेल विश्वविद्यालय खेल के प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक, खिलाड़ियों के पोषण जैसे विषयों पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स संचालित करेगा। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
फ्रॉम बिहार लेट्स टेक यू टू लद्दाख। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। द सेंटर रिवील्ड इट्स प्लान्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव रीच इन द रिमोट एरियाज ऑफ द रीजन। विद दिस मूव, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख विल इंक्रीज फ्रॉम 2 to 7। करंटली लेह एंड कारगिल आर द ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी।
Addressing the long pending demand of the people, Union Government has decided to raise the status of 5 subdivisions to districts in the Union Territory of Ladakh. These include Zanskar, Dras, Sham, Nubra and Changthang. This is a significant decision that will help create ample and equal opportunities for the residents living in far off areas, bringing developmental activities and essential services to their doorsteps. The establishment of the new districts is expected to improve the delivery of public welfare schemes from both the central government and the Ladakh administration. This move will also enhance medical facilities, a crucial need given the hardships faced by people who had to travel great distances in the hilly areas to avail such services. Additionally, from a strategic perspective, this decision is beneficial since Ladakh shares borders with Pakistan and China. The creation of new districts will not only stimulate developmental activities but also improve coordination among various departments. The MHA has directed Ladakh administration to form a committee to evaluate various aspects of the new district formations, including location of headquarters, boundaries and organizational structure. The committee is tasked with submitting its findings within 3 months. Based on the committee's report, Ladakh administration will then present a final proposal for the creation of the new districts to the Union Home Ministry for further consideration. Numerous organizations in Ladakh had consistently advocated for this demand. This decision marks a significant step towards advancing tourism, development and equal opportunities in the region. People of Ladakh have hailed this decision and thanked the Union government for this initiative. For Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today is the death anniversary of renowned freedom fighter and revolutionary poet Qazi Nazrul Islam. The versatile genius fought the British through his creative writings. Nazrul's opposition to the British rule started when he served in the British Army during World War I in the old Bengali 49th Regiment based in Karachi. It was in Karachi where he came under the influence of the Bolshevik Revolution. After the war, Nazrul returned to his native Bengal, determined to write and rally against foreign rule. Within a few years, he was influenced by the non-cooperation movement and became aware of the plight of millions of Indians.
The poverty and misery of the Indians would become an important part of his artistic consciousness and poetic oeuvre, Agnibina. A collection of Nazrul's famous poems from this period are full of his newly awakened political consciousness. One poem from Agnibina is Bidrohi.
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া খোদার আসন পারস ছেদিয়া উঠি আছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রী।
সিমিলারলি দ্য খিলাফত এজিটেশন মেড হিম রিয়েলাইজ the necessity and imperatives of a Hindu-Muslim brotherhood that would rise against the British. In November of 1922, Qazi Nazrul Islam was arrested in Calcutta, accused of sedition by the British government. In response to his sedition charge, Nazrul shocked the British by representing himself in court. Nazrul Islam worked for All India Radio, Kolkata. He acted in several films and wrote numerous songs. Nazrul Geeti is a genre of his Bengali songs.
Qazi Nazrul Islam breathed his last on August 29, 1976 in Dhaka. In accordance with his wish, which he had expressed in one of his poems, he was buried beside the central mosque of the Dhaka University.
The death anniversary of a great freedom fighter, Haipo Jadonang from Manipur, also falls on this day. He fought valiantly against the British rule. The spiritual leader and political activist's quest for freedom brought him in direct conflict with the British. Jadonang was a staunch critic of the British rule and the changes happening in the region marked by injustices, labour, exploitation and taxation. His movement for the establishment of a Naga state was spearheaded in the North Kachar Hills, Manipur and the Naga Hills. He mobilized people and many Naga tribes against the British. He urged his followers to stop paying taxes to the British administration. Jadonang was inspired by Mahatma Gandhi and composed a song in his honor. Jadonang was hanged on the banks of Nambul River in Imphal on August 29, 1931. His legacy was carried forward by his cousin and well-known freedom fighter, Rani Kaidenliu, who spent 14 years in jail for India's independence. The great son of the soil may not be with us today, but Haipo Jadonang's legacy of waging a fight against the British to do away with injustices and oppression continues to live on.
आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
First, let's focus on Paris, where Paralympic Games 2024 have been officially inaugurated with the grand opening ceremony. French President Emmanuel Macron declared open the games during a colourful ceremony in the heart of Paris. A total of 4,400 Paralympians representing 167 nations marched from Champs-Élysées to Place de la Concorde. Tokyo 2020 gold medalist javelin thrower Sumit Antil and world record holder table tennis player Bageshri Jadhav led the Indian contingent. A total of 84 Indian para-athletes will compete in this edition of the Games. It is India's largest contingent in Paralympic history. The Paris Paralympics will conclude on the 9th September with a closing ceremony.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेल दिवस के अवसर पर कहा है कि उनकी सरकार राज्य में प्राथमिकता के साथ खेलों को बढ़ावा दे रही है।
Now let's turn our attention to tennis. In US Open tennis, second seeds Novak Djokovic and Aryna Sabalenka have both advanced to the third round singles event at Flushing Meadows in New York. In men's singles, Serbian Novak Djokovic entered the third round after his opponent and compatriot Laszlo Dieri retired in the third set of their second round clash. Djokovic was leading 6-4, 6-4, 2-0 before world number 109 Dieri retired at the Arthur Ashe Stadium. In women's singles, Belarusian Sabalenka defeated Lucia Bronzetti of Italy. Now let's turn our attention to the business world. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended on a positive note in a volatile trading session amid buying across various sectors including IT, auto and FMCG. Meanwhile, in the intraday trade, both the indices touched a record high. At close pack of 30 companies, the Sensex was up 349 points or 0.43% at 82,134. Nifty 50 ended the session at 25,158 with 0.42% or 106 points gain.
Mm-hmm.
और अब बात उन महान व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। आज ही पुण्यतिथि है मनुभाई राजाराम पंचोली की। वे गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनुभाई पंचोली द्वारा रचित एक उपन्यास सोक्रेटिस के लिए उन्हें सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Today we're also remembering Michael Jackson. It's his birth anniversary today. Singer, songwriter and dancer, he was the most popular entertainer in the early and mid-1980s. Even today, he is widely regarded as the king of pop. He became a global solo star with his 1979 album Off the Wall. His music videos, including those for Beat It, Billie Jean and Thriller from his 1982 album Thriller, are credited with transforming the medium into an art form. And listeners, for you, we have the song Beat It.
आज ही जयंती है विक्रमजीत कंवरपाल की। वे हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे। उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया था। विक्रमजीत कंवरपाल एक्टर बनने से पहले भारतीय सेना के अफसर रह चुके थे। उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद साल 2003 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, टू स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म आरक्षण का ये गीत।
झटक कर ज़ुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। हिला कर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो, अच्छा लगता है।
खुशबू से बहलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, आँख में आँखें डाल के कह दो
Today, we're also remembering Jayashree Gadkar, actress. She's known for Saranga, Sampoorn Mahabharat, and also Love Kush. Also, Sangte Aika, Avgachi Sansar, Sadi Mansa, Manini are some of her celebrated movies. She has also won national award for her films Manini, Vedanta, Sawal Maja Aika, Sadi Mansa. Her memorable role on national television was of Kausalya, Lord Ram's mother in Ramanand Sagar's tele-epic Ramayan in the 80s. Also, we are remembering James Reed, American blues musician and songwriter. His particular style of electric blues was popular with a wide variety of audiences. Reed songs such as Honest I Do, Baby What You Want Me to Do, and Bright Lights Big City appeared on both Billboard magazine's R&B and Hot 100 singles chart. And for you listeners, we have this song, Bright Lights Big City.
Bright Lights.
आज के राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वे भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे भारत सरकार के अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं।
टुडे इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ ए नागार्जुन राव, इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। ही हैज एक्टेड इन तेलुगु सिनेमा, हिंदी एंड तमिल फिल्म्स। ही रिसीव्ड 2 National Film Awards. He has starred in films such as Shiva, Neti Siddharth, Chaitanya, Nirnayam and many others. And for you listeners, we have this song, Tum Mile, Dil Khile, to listen to.
Tum Mile, Dil Khile, Aur Deene Ko Kya Chahiye, Na Ho Tu Daas Tere Paas Paas, Main Rahunga Zindagi Bhar, Sare Sansaar Ka पाया चंदा तुझे।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।